تفسیر سورت دخان مکی سورت ہے، اس کے 3 رکوع اور 59 آیات ہیں، الفاظ اور کلمات کی تعداد 349 ہے، حروف کی تعداد 1495 ہے۔ سورت دخان، جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، دخان یہ نیا لفظ ہے اور یہ دھوئے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے ادخنتن اور دواخن۔ سورت دخان ان اہم اور عظیم سورتوں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں پڑھا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو ان 20 سورتوں میں شامل کیا جو نظائر کہلاتی ہیں، اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضمون کی مشابہت کی وجہ سے ملا کر 2-2 سورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے۔ سورت دخان کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورت دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کی رات یا دن میں سورت دخان پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو بہرحال سورت دخان جو ہے یہ بہت اہم اور عظیم سورتوں میں سے ہے۔ اس کا موضوع اور جو اس کا مرکزی مضمون ہے، دراصل اس میں بھی توحید کے دلائل جو ہیں ان کا پہلو نمایاں ہے، اور توحید کے دلائل دیتے ہوئے ڈرانے کا پہلو غالب ہے۔ بڑی سخت جو پکڑ ہے اسے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ڈراتے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ حامیم، حامیم، تو سورت دخان بھی حوامیم میں سے ہے، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے، آل حامیم یا حوامیم میں سے ہے، اور حامیم یہ 2 حرفی مقطعات سے شروع ہونے والی سورت ہے، کہ آغاز میں 2 حروف آئے ہیں جو الگ الگ جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے معنی اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، یہاں پہ وہ جو ہے یہ قسم کے لیے آیا ہے، اور جو ہے پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ یہاں پر جو وہ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ قسم کے لیے۔ تو عام طور پہ وہ جو ہے وہ آتا ہے اور کے لیے آتا ہے، تو اس کو وہ عطف کہتے ہیں کہ وہ 2 جملوں کو وہاں ملا دیتا ہے، لیکن وہ قسمیہ بھی ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ قسمیہ ہی ہے۔ الکتاب المبین، الکتاب الف لام نے اس کو معرفہ بنا دیا، تو خاص کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کی عظمت اور شان جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قسم ہے الکتاب کی، خاص کتاب قرآن کی، المبین۔ مبین کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے روشن، اور دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واضح، کلیئر، اور یہ لازم اور متعدی بھی ہے۔ قرآن روشن ہے، جو اس کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ کلیئر ہوتے جاتے ہیں، ہر چیز واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ قسم ہے کتاب روشن کی، کتاب واضح کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، تو لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑا زبردست انداز ہے۔ اب یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی، کیونکہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو کسی دعوے پر شہادت پیش کرنا مقصود ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کی قسم کیوں کھائی؟ تو قسم کھانے کا مدعا کیا ہے؟ آگے کہا کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا. تو معنی کیا ہے کہ کتاب مبین، کتاب روشن، کتاب واضح جو ہے یہ کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تو اس کو کسی معمولی ہستی نے نازل نہیں کیا، یہ ہماری نازل کردہ کتاب ہے. آپ دیکھیے انا میں بھی ہم کے معنی پائے جاتے ہیں اور تاکید کے، اور دوسرا کیا ہے انزلنا ہوں، تو انزلہ کا مطلب کیا ہے؟ اتارنا، نازل کرنا، اور نا پھر آ گیا. تو جب انا آ گیا تھا تو پھر نا کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن تاکید در تاکید ہم نے نازل کیا ہے. ہو کی ضمیر قرآن کے لیے آئی ہے. اس کو کب نازل کیا قرآن مجید کو؟ فی لیلۃ مبارکۃ، تو مبارک رات میں اس کو نازل کیا. لیلۃ واحد ہے اور لیالی جو ہے وہ اس کی جمع ہے. تو گویا کہ اللہ تعالی نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. تو یہ مبارک رات جو ہے یہ کون سی رات ہے جس میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا؟ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. کہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے؟ قرآن ہی سے ہم اس کی دلیل ڈھونڈیں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کب نازل ہوا. اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت جو ہے سورۃ البقرہ آیت 185 میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر آپ احادیث سے دلیل ڈھونڈ سکتے ہیں، احادیث کو آپ جمع کریں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں تھی، اور رمضان کے بھی آخری عشرے کی تاک رات میں. تو 40 کے قریب ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے لیلۃ القدر کا جو ہے وہ فضیلت، اہمیت اور اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو کیا فرمایا کہ قرآن مجید کو جو ہے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کی کوئی رات، اور رمضان کے مہینے کی بھی کون سی رات؟ آخری عشرے کی تاک رات. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اس کو کہا جا رہا ہے اس رات کو لیلۃ مبارکہ، کہ یہ رات مبارک رات تھی. تو گویا کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کا اہتمام کیا، خیر و برکت نازل کرنے کا اہتمام کیا. تو یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، بڑا اہم فیصلہ تھا، فیصلوں میں اہم ترین فیصلہ تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خیر و برکت والی رات کہا ہے. سورۃ القدر میں اللہ رب العزت اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں جو ہے وہ نازل کیا. تو گویا کہ قرآن مجید جس رات زمین پر اتارا گیا تو وہ رات معمولی رات نہیں تھی. کیا فرمایا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. کیوں ایک رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر؟ کیونکہ ایک رات میں اس میں قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کر دیا گیا، قوموں کے اتار اور چڑھاؤ کا، ہدایت اور ضلالت کا، کامیابی اور ناکامی کا، پاس ہونے اور فیل ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا. تو اس ایک رات جو ہے وہ رات ایسی قدر والی رات ہے، ایسی مبارک رات ہے، ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. پھر فرمایا اس لیے کہ تنزل الملائکہ والروح، کہ اترتے ہیں اس میں ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام. اس رات ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر جو ہے وہ معاملے کو لے کر اللہ کی اجازت سے، یعنی ہر معاملہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے لے کر وہ اترتے ہیں. سلام ان سلامتی ہے، اور یہاں پہ کیا کہا گیا، گویا کہ سلامتی ہی سلامتی ہے. اور اس رات میں کتنی دیر تک سلامتی رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا ایک گھڑی کے لیے بس وہ ہوتی ہے قبولیت کی گھڑی، پوری رات حتی کہ طلوع فجر ہو جائے. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ بڑی مبارک رات تھی، یہ بڑی اہم رات تھی. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو بعض دنوں اور مہینوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے. کیسے؟ جیسے آپ دیکھ لیں کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ باقی 11 کو نہیں ہے، حج کے دنوں کو جو شرف خصوصی حاصل ہے وہ باقی دنوں کو نہیں ہے، ہے نا؟ تو اصل میں بعض گھڑیاں، بعض دن، بعض اوقات جو ہے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تو اسی طرح دنوں میں سے جمعے کا دن، جمعے کے پورے دن میں سے وہ گھڑی جب دعا قبول ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو، بعض گھنٹوں کو، بعض اوقات کو بڑی اہمیت دی ہے. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کا نزول کوئی اتفاقی واقعہ یا حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بے موسم کا خود رو پودا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی من گھڑت چیز تھی، بلکہ کیا تھی، یہ پوری ایک سکیم تھی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کو ہم نے نازل کیا ایک مبارک رات میں. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ہی تھے ڈرانے والے. منذر کی جمع ہے منذرین، اور ہم ہی تھے خبردار کرنے والے. تو معنی کیا ہے کہ ہم نے جو ہے اس رات قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ ہم انسانوں کی اصلاح اور ہدایت جو ہے اس کا انتظام کریں، تاکہ ہم تمام جو امور ہیں ان کی تقسیم کریں. تو آپ دیکھیے کہ انا کنا منذرین جو ہیں، یہ قرآن کے مقصد نزول کا جو ہے وہ بیان ہے کہ پچھلی قوموں کو ان کی نافرمانیوں پر ہلاک کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خیر و شر سے ان کو آگاہ کیا تھا نا. اب اہل عرب کو بھی ان کی نافرمانی پر سزا دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ ان کو آگاہ کر دیا جائے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. تو سنت الہی کیا ہے کہ قوموں کو تباہ کرنے سے پہلے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو یہ کہا گیا کہ اس رات قرآن نازل کر دیا گیا، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا سارے کا سارا قرآن ہی اسی رات نازل کر دیا گیا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ سارے کا سارا قرآن تو لوہے محفوظ میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کر کے فرشتوں اور بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا. ایک رائے یہ ہے کہ وہ قرآن جو تھا وہ فرشتوں یا جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا. دوسری رائے کیا ہے، یا پھر یہ کہ سارا قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں سے حسب موقع اور ضرورت 23 سال تک، تقریباً 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، جس کا آغاز سورۃ الق کی پہلی 5 آیات سے میں جو ہے وہ ہوا. اور یہ جو سورۃ الق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ کہتے ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئی، تو کہتے ہیں کہ یہ اسی رات میں جو ہے اس کا آغاز ہوا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور کیا کرتے ہیں، کیونکہ کہیں اللہ اس کو مبارک رات کہتے ہیں جیسے اس سورت میں، اور کہیں اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے. اگلی آیت بتاتی ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس میں جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے. کس چیز کا؟ کل امر حکیم، ہر کام کا حکمت کے ساتھ. تو ہر کام کا جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. اور کیوں فیصلہ کیا جاتا ہے؟ امرم من اندینا، ہمارے حکم سے فیصلہ کیا جاتا ہے. اور حکیم کے ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ معنی کیا ہے کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ پختہ فیصلے ہیں، उनमें कोई कमी बेसी नहीं कर सकता, फैसले मुहकम हैं और उन फैसलों में कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। तो बताया जा रहा है कि अल्लाह ने जो है, अल्लाह ताला क्या करते हैं कि इस रात में हर चीज का मुहकम फैसला करते हैं और हिकमत के साथ फैसला करते हैं। तो अमरिन हकीम के दो मानी हो गए, एक तो ये कि फैसले अल्लाह के हिकमत पर मबनी है, उनमें किसी गलती का इम्कान नहीं है, और दूसरे मानी ये है कि फैसले पुख्ता है, मुहकम है, उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर आप देखिए कि इसी बात को सूरतुल कदर में ऐसे कहा गया कि तनज्जुलुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। आइए देखते हैं कि इस एक रात में फिर होता क्या है। अल्लाह ताला जो है इस रात में अफराद और कौमों और मुल्कों की किस्मत के फैसले फरिश्तों के हवाले कर देते हैं और फिर वो इन्हीं फैसलों के मुताबिक अमल करते रहते हैं। एक राय तो ये है। दूसरी राय जो है, दूसरी बात जो हमारे सामने आती है, और मुफस्सरीन ये कहते हैं कि बाज लोग जो है उन्होंने क्या किया कि लैलतुल कदर को एक और रात कह दिया और लैलतुल मुबारका जो है एक और रात को कह दिया, और कहते हैं कि ये राय जो है ये ठीक राय नहीं है। क्यों? इसलिए इसको आप यूं भी समझ सकती हैं कि लैल जो है अरबी जबान में रात को कहते हैं और शब जो है वो किस जबान में कहते हैं? फारसी में। तो बाज लोगों ने ये समझा कि लैलतुल कदर तो है रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई रात, और जो शबे बारात जिसको लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि उससे मुराद है ये जो लैलतुल मुबारका है। तो इस सिलसिले में आप एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जब बात सामने आती है तो कैसे सामने आती है कि लोगों ने जो है वो लैलतुल मुबारका का नाम जो है वो माह शाबान की 15 तारीख करार दे दिया, इसी को शबे कदर शबे बारात कहते हैं। अब शब का लफ्ज लैला की फारसी है और बारात का क्या है? गोया के कदर। तो लैलतुल कदर का उन्होंने फारसी जबान में तर्जुमा करके एक दूसरी रात मनाने लगे और उसको एक फेस्टिवल का नाम दे दिया। तो शबे बारात में बिलमूम क्या होता है? पटाखे चलाए जाते हैं, आतिशबाजी चलाई जाती है, और हिंदू जैसे अपने दशहरा के मौके पे करते हैं, अब मुसलमान भी शबे बारात में ये करते हैं। तो असल में हमें जो है कुरान से सूरतुल कदर की जो दलील है उससे, फिर सूरत अल बकरा, इसकी दलील मैंने आपके सामने रखी कि सूरत अल बकरा और सूरत अल बकरा की आयत नंबर 185 इससे, और फिर सूरत दुखान की इस आयत, यानी तीन दलीलें जो हैं इससे हमें ये बात पता चलती है कि लैलतुल मुबारका और लैलतुल कदर जो है वो क्या है कि इसको मुबारक और कदर वाली रात इसलिए कहा गया कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। और सूरत कदर और दुखान को जमा करें तो पता चलता है कि ये रात एक ही रात है, दो मुख्तलिफ रातें नहीं हैं। फिर तीसरी बात जो अहम बात है कि जिसको हमें समझना चाहिए कि इस रात को अल्लाह ताला क्या करते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिसका अल्लाह ताला जो है वो फैसला करते हैं। तो इस सिलसिले में जो बातें हमारे सामने आती हैं वो ये है कि अल्लाह ताला जो है वो बताते हैं, जो भी फैसला करते हैं वो फरिश्तों के सपुर्द कर देते हैं, और मसलन कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसको रिस्क मिलेगा, कितना रिस्क मिलेगा, किसके ऊपर कहत आएगा, कितना आएगा, गोया के अफराद हैं या कौमें हैं या मुल्क हैं, उनकी जिंदगी मौत का फैसला है या रिस्क का फैसला है या उरूजो जवाल का या फिर किसी भी चीज का। तो अल्लाह ताला इस रात में हर चीज का फैसला करते हैं अमरिन हकीम, हिकमत के साथ, और मुहकम फैसला जो है वो अल्लाह ताला कर देते हैं। तो इससे मुराद फिर क्या बात हमारे सामने आई है कि इससे मुराद जो है वो लैलतुल कद्र है। और इस हिस्से में अगर आप जो है सूरतुल कद्र को भी पढ़ें तो हमें क्या बातें हमारे सामने आती हैं कि शबे कदर में लैलतुल कदर जो है ये इतनी बरकत वाली रात है कि इसमें जो शख्स ईमान और एहतसाब के साथ जागता रहता है, शबेदारी करता है, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह जो है वो माफ कर देते हैं। तो क्या बात हमारे सामने आई कि ईमान और अपना मुहासबा करना, उसका जायजा लेते हुए जो इस रात को गुजारता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह जो है वो माफ कर देते हैं। फिर आप देखिए कि दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि इस एक रात में इंसान इतना काम कर सकता है जो आम कई हजार सालों में नहीं कर सकता। तो गोया कि ये एक रात इतनी नफे की रात है कि इसमें इंसान जो है वो बहुत ज्यादा खैर तक पहुंच सकता है। उम्मते रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्र कम है, कहते हैं दूसरी उम्मतों को ज्यादा उम्र मिली, तो ये जो कमी है ना, एक रात में अगर इबादत की जाए तो क्या है कि फिर कई हजार साल से जब बेहतर है, खैरु मिन अल्फ शहर, तो इंसान जो है वो एक रात में नेकी का बहुत तवील सफर जो है वो तय कर सकता है, ताकि मुख्तसर उम्र में ज्यादा से ज्यादा सवाब जो है वो हासिल किया जा सके। फिर अगली अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस रात को मुबहम क्यों रखा, क्यों इसको वाजे नहीं कर दिया, जब ये इतनी कीमती चीज है तो इसलिए इसको मुबहम रखा ताकि लोग जो है हर ताक रात में जागें, ताकि पांचों ताक रातों में जागें इस शौक में कि एक रात हजार महीनों से बेहतर है और वो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा नेकियां जो हैं वो हासिल करें। तो ये है बात, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस रात की जो फजीलत है, जो आप लैलतुल कदर की फजीलत, आप बहुत ही हदीस है वो जो 40 के करीब में आपको कह रही हूं, आप उनसे देख सकती हैं कि इस रात की सबसे अहम फिर फजीलत क्या है, क्या बात सामने आई, कुरान मजीद नाजिल किया गया, ये इतनी बड़ी दौलत है, ये इतनी बड़ी नेमत है कि हमारा बिगाड़ है या हमारी इस्लाह है वो कुरान ही की बदौलत हो सकती है, तो हमें कुरान से दोस्ती करनी चाहिए। इस रात में हमें क्या करना चाहिए, हमें रुकू और सुजूद, लंबे लंबे कयाम, लंबे लंबे सजदे, दुआ इस्तग़फार, और फिर अल्लाह ताला से अपने लिए दुनिया भी मांगे और अल्लाह से अपने लिए आखिरत भी मांगे, खूब अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करें, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं अमरम मिन इंदिना, ये हुक्म है हमारे पास से, इन्ना कुन्ना मुर्सलीन, बेशक हम ही पैगंबर भेजने वाले हैं। तो बिला शुबा अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ने इस रात को जो इतनी फजीलत दी कुरान की वजह से, तो अल्लाह ताला का क्या इरादा था, अल्लाह ताला जो थे वो रसूल भेजने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल जो है वो मबूस कर दिया कि एक रसूल है, उसके पास किताब है कुरान मजीद, और वो सारी दुनिया के लोगों को जो है वो खबरदार करे, क्या कहा, हम खबरदार करने का इरादा रखते थे, है ना, इसलिए हमने जो है वो इस रात को कुरान नाजिल करने का फैसला किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाने का फैसला किया। आयत नंबर 3 के आखिर में है इन्ना कुन्ना मुनज़रीन, आयत नंबर 4 के आखिर में क्या है इफीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और 5 में क्या है इन्ना कुन्ना मुर्सलीन रहमतम मिन रब्बिक, रहमत है तेरे रब की तरफ से। तो कुरान का नज़ूल अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमतों में से सबसे बड़ी रहमत, और रसूल का भेजा जाना क्या है, ये अल्लाह की रहमत का ज़ुहूर है। आप कैसे थे, आप क्या थे, आप रहमतुल्लिल आलमीन थे, आप नज़ीर और बशीर थे, आप खातिमुन नबीयीन थे, आप जुल्म और शिर्क और कुफर में डूबी हुई इंसानियत को सीधी राह दिखाने के लिए जो थे वो आए, आपको इसलिए रसूल बनाकर भेजा गया ताकि आप लोगों को जो है वो हदायत का रास्ता बताएं, आप दाई आजम थे, तो कुरान भी रहमत और रसूल भी रहमत, कहां से, मेरे रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, इन्नहु वस्समीउल अलीम, बेशक वो है वही सुनने वाला जानने वाला। तो आप देखिए कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो क्या बात कह रहे हैं कि अपनी इन सिफात का हवाला देते हुए कह रहे हैं ये अल्लाह जो है वो कैसा है, समी है, सुनता है, अलीम खूब जानता है। किन लोगों को सुनता और जानता है? कि अल्लाह को ये बात पता है, अल्लाह इस बात को जानता है कि लोग शिर्क कर रहे हैं, कुफर कर रहे हैं, और अल्लाह की जमीन को, अल्लाह की जमीन को अल्लाह लोगों ने क्या किया, गुनाहों से भर दिया। तो जब लोगों ने अल्लाह की जमीन को गुनाहों से भर दिया तो अल्लाह चूंकि अलीम है, खूब जानने वाला है, तो अल्लाह ताला ने इस बात का फैसला किया कि अल्लाह ताला जो है वो लोगों को कुरान दे और लोगों के पास रसूल भेज दे। दूसरी बात क्या है, समी, सुनता है, जानता है। तो समी और अलीम जो है दोनों सिफात एक दूसरे को जो है वो मुकम्मल करती हैं। अल्लाह ताला बताते हैं कि ऐसे नहीं अल्लाह ने ये काम किया, अल्लाह के पास इल्म है, अल्लाह जानने वाला है, तो उसने ये फैसला किया कि लोगों की लड़ाइयां उसको खत्म करे और कत्लो गारत को जो है वो अमनो चैन में बदल दे। वो रब जिसने कुरान को भेजा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया, वो कैसा है, उसका क्या तारुफ है? कायनात से अल्लाह ताला दलील देते हैं, रब समावाती वल अर्दी, रब है आसमानों का और जमीन का। समा की जमा है समावात, और अर्द यहाँ पे बजाहिर ऐसे लगता है कि वाहिद आया है, लेकिन ये इस्म जिन्स है। वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल होता है, और हमें कुरान से पता चलता है कि आसमान भी साथ हैं और जमीनें भी साथ। तो अल्लाह ने इन सबको जो है वो सिर्फ पैदा ही नहीं किया, बल्कि तमाम जो कायनात का इंतजाम है वो अल्लाह करने वाला है। तो आसमान और जमीन की रबूबियत जब अल्लाह करता है, वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है, तो फिर ए इंसान, तुम्हारी सिर्फ जिस्मानी जरूरत ही नहीं बल्कि तुम्हारी रूहानी तरबियत और जरूरत का भी अल्लाह ने तमाम किया कि कुरान को नाजिल किया और रसूल को मबूस किया। और ये आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है, इससे मुराद क्या है कि ये सारा कुछ अल्लाह ने मुसख्खर किया है इंसानों की जिस्मानी जरूरत को पूरी करने के लिए, और रूहानी जरूरत के लिए जब कुरान नाजिल किया तो इंसान को अल्लाह के आगे मुसख्खर हो जाना चाहिए। इन कुंतुम मुक़्तिनीन, अगर हो तुम जो है वो ईकान रखने वाले, अगर हो तुम यकीन करने वाले। तो ये कायनात का जर्रा जर्रा पुकार पुकार कर कहता है कि तुम अपना आप अल्लाह के सुपुर्द कर दो। यहाँ पे मलामत की जा रही है मुखातिबों को कि शिर्क छोड़ दो, तुम्हारे अंदर अगर मानने का इरादा है तो तौहीद परस्त बन जाओ। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई माबूद मगर वही। अब आप देखिए कि तौहीद का मजमून बयान किया जा रहा है कि एक इलाह है, वही कौन, युहयी व युमीत, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, जो जिंदा करता है और मारता है। तो क्या बात बताई, सिर्फ खालिक ही नहीं मालिक भी है, उसके पास इख्तियारात हैं, और जिंदगी और मौत जो है वो देता है। रब्बुकुम, रब है तुम्हारा, व रब्बु आबाएकुमुल अव्वलीन, और रब है तुम्हारे अगले बाप दादा का भी, जो तुम्हारे बाप दादा इस दुनिया से चले गए, जो तुम्हारे पहले अबाओ अजदाद थे, उनका भी रब है। अब आप देखिए कि आबाएकुम जो है ये क्या है, ये जमा इस्तेमाल हुआ है, और आबा जो है फिर इसका वाहिद क्या है, अब अबाओ अजदाद से मुराद अहले मक्का के जो अबाओ अजदाद थे और जो शिर्क करते थे। तो क्या बताया जा रहा है कि तुम ही नहीं, तुम्हारे अबाओ अजदाद भी शिर्क करने वाले थे। अल अव्वलीन, अव्वल की जमा है अव्वलीन, और इसके माने क्या है, ये पहले अगले, तो तुम भी शिर्क कर रहे हो वो, और वो भी शिर्क करते थे, तुम भी गलती पर हो और वो भी गलती पर थे। तो क्या करो, एक इलाह की इबादत करो। बल हुम फी शकीन यलअबून, बल्कि इन लोगों का हाल क्या है कि ये शक में है, यलअबून, और शक में ही खेलते हैं। और यहां पे शक में खेलते हैं, इसके दो मानी बयान किए जाते हैं। तो क्या मुराद है कि वो शक में पड़े हुए खेल रहे हैं? अब आप देखिए कि अगर ये पता हो कि जो है वो ये टेस्ट होगा कि नहीं, शक हो, पता नहीं होगा कि नहीं, तो क्या होता है कि फिर इंसान उसकी तैयारी नहीं करता, इंसान के अंदर संजीदगी पैदा नहीं होती। और संजीदा इंसान कब होता है? जब उसको यकीन हो कि हाँ ऐसा होगा। तो यकीन जो है उसके अंदर संजीदगी की शिद्दत पैदा करता है। और शक जो होता है वो क्या करता है कि वो इंसान को जो है वो कुछ भी करने से जो है वो रोक देता है। तो एक शक तो इस बात का था कि बाप दादा की तकलीफ में वो ये कह देते थे कि क्या वाकई आसमान जमीन अल्लाह ने बनाया है, हमें तो इस बात का पूरा यकीन नहीं है। ठीक है, तो मामला मशकूक हो गया। तो इस तरह ये जो दलायल थे ना, इनको वो खेल तमाशा करार देते। दूसरा इसका मतलब ये है कि वो बड़े जोरों शोर के साथ इस बात का दावा करते थे कि अजी कयामत कोई नहीं आने वाली, जो मर जाता है वो दोबारा जिंदा थोड़ी होता है। उनके दिलों में ये शक था कि अगर कयामत का अकीदा दुरुस्त है तो फिर तो हमारी शामत आ जानी चाहिए थी, हमें पकड़ लिया जाता। लेकिन हम इतने गुनाह करते हैं, इतनी ज्यादतियां करते हैं, हमें तो कोई पकड़ता ही नहीं है। तो चूंकि हमें पकड़ा नहीं जा रहा, इसलिए वो शक में थे और उन्हें यकीन ही नहीं था कि कयामत आएगी। तो वो क्या करते थे कि जब कुरान की आयतें नाजिल होती, तौहीद और कयामत का बयान होता, तो इसका मजाक उड़ाते। क्या करते? यलअबून, खेलते रहते, शक में रहते। मतलब आप देखें कि बाज औकात आप अपने बच्चों को एक टाइम देते हैं कि इतने तक इतनी देर खेल सकते हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे। और फिर आप कहते हैं कि देखो अगर मेरी बात ना मानी तो मैं पिटाई भी करूंगी। और फिर क्या होता है कि बाज औकात आप उनको चांस देते हैं, जब उनको आप कुछ नहीं कहते तो वो क्या कहते हैं, वो शक में ही रहते हैं कि पता नहीं पिटाई होगी कि नहीं। तो क्या करते हैं, खेलते ही रहते हैं और फिर होमवर्क नहीं करते। और फिर क्या होता है कि फिर जब आप पिटाई कर देते हैं तो अगले दिन उनका शक दूर होता है और फिर वो सही से काम करते हैं। और शक कैसे होता है कि बाज औकात जैसे बाज औरतें हैं वो कहती हैं हमारे शोहर तो हर रोज ताजा खाना खाते हैं। और फिर क्या किया कि खाना ताजा ना पकाया कोई बात नहीं, देखा जाएगा, पहला भी खा लेंगे। जब सही से बात अभी पता नहीं होती ना, अब क्या है कि शोहर ने आ जाकर खाना ही नहीं खाया, तो अब शक दूर हो गया ना। अब क्या है कि अगले दिन औरत सुबह सुबह उठ के खाना पकाती है कि मेरे शोहर ने खाना नहीं खाया, उसका दिल उदास होता है। शक जब दूर हो जाता है तो इंसान का रवैया और होता है, जब इंसान शक में होता है ना तो फिर जो है उसका रवैया और होता है। तो कुछ लोग शक में ही रहते हैं और मारे जाते हैं क्योंकि वो खेलते रहते हैं ना। तो अक्सर लोग जो हैं वो कयामत के बारे में शक में हैं, जैसे अहले मक्का शक में थे। और आज मुसलमान भी ईमान तो लाए हैं, कलमा तो पढ़ा है, लेकिन जो इतने गुनाह हैं और ये कत्लो गारत और झूठ और ज्यादतियां, ये सारा कुछ इस वजह से है कि उन्हें यकीन नहीं है कि वाकई हम जो हैं हम मरेंगे तो मरने के बाद दोबारा कयामत आएगी और हिसाब किताब होगा। तो अहले मक्का भी शक कर रहे थे। फरतकिब, पर तू इंतजार कर। और रकाबा से है ये, और आपको पता है गर्दन के लिए आता है, रकीब भी कहते हैं जो गर्दन उठा उठा कर इधर उधर नजर रखता है। तो फरतकिब तू नजर रख, तू इंतजार कर, यौमा उस दिन का, तातिस समाऊ लाएगा आसमान, क्योंकि अता का मतलब आना होता है, जब इसके बाद बा की प्रेपोजिशन आ जाए तो लाना, क्योंकि दुकान से पहले बा आ गया है। उस दिन लाएगा आसमान भी दुकान इन धुएं को, और दुकान जो है ये धुएं के लिए आता है। अदखिनतुन और दवाखिन, इसकी दो जमा है। मुबीन, खुला वाजे। और ये धुआं कैसा होगा, यक्ष नाश छा जाएगा लोगों पर। गशी होती है ना इंसान की अकल जो है उसके ऊपर, गशी जब सारी हो जाती है तो इंसान बेहोश हो जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता। कयामत का नाम भी गाशिया है। तो अब यहां पे क्या है कि ये जो दुकान है ये इतना खुला होगा, ये खुद भी वाजे है और सबको मुतासिर करेगा। लाजिम और मुतद्दी को याद रखें। और किन पर आएगा, अन्नास लोगों पर। हाजा अजाबुन अलीम, ये है अजाब दर्दनाक, हमजा लाम मीम दर्दनाक के लिए है। तो ये धुआं जो आएगा ये ऐसे नहीं आएगा, ये दर्दनाक अजाब बनकर आएगा। रब्बना, फिर लोग क्या कहेंगे, है हमारे रब, इक्शिफ अन्ना, हटा दे हमसे। काशीन फा के माने क्या होते हैं, खोल देना, हटा देना, तो दूर कर देना। तो अब ये लोग कहेंगे कि तू खोल दे, तू दूर कर दे। तो अन है ना जैसे सांप लगा हुआ है, चिमटा हुआ है, हटा दे हमसे,
अजाब अजाब, और अजाब से मुराद है ये धुएं का अजाब जो अजाबुन अलीम है। इन्ना मुमिनून, हम ईमान लाने वाले हैं। फरमाया अन्ना, क्यों कर, कहां, लहुमुज़ ज़िक्रा, उनके लिए नसीहत। अब इनके लिए नसीहत कहाँ है, अब इनके लिए लौट कर आने का वक्त कहाँ है। वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, और तहकीक आया है इनके पास रसूल खोल कर बयान करने वाला। अब इनको नसीहत कैसे फायदा देगी जबकि इनके पास पैगंबर आ चुके। सुम्मा तवल्लव अनहु, फिर वो इससे फिर गए, उन्होंने मुंह फेर लिया। वकालू, और कहा उन्होंने, मुअल्लम मजनून, पढ़ाया हुआ दीवाना। इन्ना, बेशक हम, काशिफुल अजाबी, हटाने वाले हैं, दूर करने वाले हैं अजाब को। कलीलन, थोड़ा सा, जरा सा। इन्नकुम, बेशक तुम, आयदून, इआदा करने वाले हो, फिर तुम यही करने वाले हो। तो यहां फिर इसके मानी क्या हैं कि हम जो हैं अजाब हटा देंगे, मगर जब हम हटा देंगे तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो कि तुम पहले करते रहे। तो जब तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, यौमा नब्तिशुल बत्शतल कुबरा, आज नब्तिशु, हम पकड़ेंगे। और आपको पता है बच जो है वो सख्त मजबूत गिरफ्त को कहते हैं, कुव्वत के साथ, गलबे के साथ। और फिर अलबच्चा आ गया, और अलबच्चा जो है ये फिर क्या है, ये मस्दर है। अलकुबरा, और कुबरा जो है ये बड़ी, क्यों बड़ी आया है, क्योंकि अलबच्चा की सिफत के तौर पर। तो वैसे तो मजबूत गिरफ्त है लेकिन बहुत सख्त गिरफ्त होगी, बहुत बड़ी गिरफ्त होगी। इन्ना मुंतकिमून, बेशक हम ही इंतकाम लेने वाले हैं। तो आप देखिए कि आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 16 तक एक खास मजमून जो है वो बयान हुआ है। तो आयत नंबर 10 से लेकर 16 तक, इसकी तफसीर में मुफस्सरीन में इख्तलाफ है। दो राय हैं। एक राय तो ये है कि दुखाने मुबीन से क्या मुराद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कुरैश ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी और शरारतों पर कमर बांधी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बद्दुआ की, ए अल्लाह, इन पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह 7 साल का कहत भेजकर मेरी मदद कर। आखिर इन पर सख्त कहत नाजिल हुआ कि वो हड्डियां और मुर्दार तक खाने लगे। और नौबत यहां तक पहुंची कि इनमें से अगर कोई शख्स भूख की शिद्दत में आसमान की तरफ देखता तो एक धुआं सा दिखाई देता। इस वक्त अबू सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी कौम हिलाक हो रही है, दुआ करो अल्लाह ये कहत खत्म कर दे। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और मुशरिक भी कहने लगे, परवरदिगार हम पर ये अजाब दूर कर दे। अभी आपने ये पढ़ा ना, रब्बा नक्षिफ अन्ना अजाब, रब्बा नक्षिफ अन्नल अजाबा इन्ना मुमिनून। तो मुशरिक भी कहने लगे, परवरदिगार हम पर यह अजाब दूर कर दे, हम ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, देखो जब ये अजाब दूर हुआ तो ये लोग फिर शिर्क करने लगेंगे। खैर, आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने अजाब हटा लिया तो फिर वो शिर्क करने लगे। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी। कौन सी आयत, यौमा नब्तिशुल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून। तो बदशाह से फिर मुराद क्या है, वो कहते हैं बदशाह से मुराद क्या है कि मक्की दौर में कहत तो हटा दिया गया, फिर जो है बदर की सजा, क्योंकि दुनिया में उनको क्या सजा मिली, बदर का दिन अहले मक्का के लिए अलबदशत अलकुबरा था। क्यों, इसलिए कि उसमें एक तरफ उनके लोग कैदी बन गए, कितने लोग कैदी हुए, 70, और दूसरी तरफ उनके लोग मारे गए जिसमें बड़े बड़े सरदार भी थे, कितने लोग उनके मारे गए, 70। तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो है फिर उनके लिए कहा कि बदर की सजा अभी रहती है, और फिर मुराद इससे क्या है कि, या फिर इससे मुराद है नफ नफ्तिशुल बख्शत अल कुबरा इन्ना मुंतकिमून, से मुराद है आखरत का अजाब। वो इतना बड़ा अजाब है कि कभी खत्म नहीं होगा। बदर का दिन है या जितनी गजवात है जिसने अहले मक्का को मुसीबत उठानी पड़ी, लेकिन बदर का अजाब इससे भी ज्यादा, बदर का अजाब या दुनिया का अजाब जो भी है, लेकिन आखरत का अजाब सबसे ज्यादा बड़ा है, उसमें अल्लाह सख्त गिरफ्त करेगा। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, पांच चीजें हैं जो गुजर चुकी, जिसमें ये निजाम, बदर में कैदियों की गिरफ्तारी, नंबर दो रूम का दोबारा गलबा, नंबर तीन बख्शा, बदर की जिल्लत अमेज शिकस्त, चांद का फटना और दुखान धुएं का अजाब। तो ये है बुखारी की रवायत। तो एक राय फिर क्या है कि कहर का आना, दुखान मुबीन से मुराद क्या है, बेदुखानी मुबीन से मुराद खुला धुआं, के कहर से मर रहे थे, पत्ते चमड़ा तक खा रहे थे, आसमान की तरफ निगाह उठा उठा कर देखते कि शायद बारिश हो, कोई बादल आए, तो वहां धुआं ही धुआं नजर आता, ये मुराद है। ठीक है, तो गोया कि उन पर कहर। दूसरी राय क्या है, यह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की राय है। ठीक है, वो कहते हैं कि आयत नंबर 10 में धुएं से मुराद कयामत के करीब वाला धुआं है, जो कयामत के करीब छा जाएगा और वो कयामत की अलामत होगा। ये धुआं 40 दिन जमीन को मुहित रहेगा, नेक आदमी पर इसका असर हल्का होगा, जिससे उन्हें जकाम सा हो जाएगा, और काफिर और मोमिन के लिए ये धुआं सख्त तकलीफ दे साबित होगा। ये धुआं शायद वही समावात का मादा हो जिसका जिक्र सुमस्तवा इलस्समाई वाहिया दुखान और योमा नफ्तिशुल बत्शतल कुबरा से मुराद फिर वो कयामत का अजाब लेते हैं। समझ आ गई? जो लोग ये कहते हैं कि धुएं से मुराद कहत है, तो ये जो है नफ्तिशुल बत्शतल कुबरा, इससे मुराद फिर वो बदर के दिन की जिल्लत और रसवाई मुराद लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही कयामत का अजाब। लेकिन जो लोग कहते हैं कि इससे मुराद कुर्बे कयामत की निशानियों में भी तो एक धुआं आएगा ना, वो कहते हैं कि वो धुआं है, तो फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये जो बड़ा अजाब जिसमें वो पकड़े जाएंगे, तो इससे मुराद क्या है, कयामत का अजाब। लेकिन याद रखिएगा कि मुफस्सरीन जो हैं क्या कहते हैं कि ये जो आयात है ना, अगर इन पर गौर किया जाए, तो ये आयात और इसके अंदर जो वाक्य अल्लाह ने जिसका जिक्र किया है, इन सब का ताल्लुक रसूल अल्लाह के जमाने से है। कि उनका ये कहना कि अजाब हटा दे, और फिर अल्लाह ने अजाब हटाया, फिर साथ ही कहा कि देखना ये फिर इसका इरादा करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि ये अहले मक्का की सरकशी है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने जो है वो इशारा किया है। और अहले मक्का जो थे वो क्या करते थे कि वो जो थे वो इनकार करते थे, बार बार इनकार करते थे। और आप देख लीजिए कि अहले मक्का जो थे वो क्या करते थे कि रसूल आ चुका, किताब आ चुकी, और इसके बावजूद जो थे उन्होंने मुंह फेर लिया। और क्या कहा उन्होंने रसूल को, जैसे आयत नंबर 14 में है, मुअल्लमुम मजनून, ये सिखाया हुआ है। कैसा है? मुअल्लम, जो मुअल्लम, मुअल्लम किसे कहते हैं? एक होता है मुअल्लिम और एक होता है मुअल्लम, क्या फर्क है दोनों में? मुअल्लिम सिखाने वाला होता है, और मुअल्लम जिसे सिखाया जाए, जैसे तालबिल। तो कहते थे ये पढ़ाया हुआ है, लिखा लिखा पढ़ाया, यानी किसी को जैसे टीच किया जाए, तो इसको सिखाया गया है। और क्या है? मजनून, दीवाना है, तो ये इल्जाम लगाते थे। अब यहां पर अहले मक्का की सरकशी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला तारीख से एक मिसाल लाते हैं। मिसाल बड़ी जबरदस्त है, और आप देखेंगी कि कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत ज्यादा जिक्र है, और दूसरी तरफ फिरौन का। जैसे मक्का के सरदार थे और उनके पास बाग और बागीचे थे और अमीर थे और सरकशी पर तुले हुए थे और अड़े हुए थे, इसी तरह फिरौन था। और फिरौन तो अक्सरुल काफिरीन था। क्या फरमाया? वलकद फतन्ना कबलहुम कौमा फिरऔना, और बेशक इससे पहले हम फिरौन की भी, यानी कौम फिरौन की भी आजमाइश कर चुके। क्या फरमाया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, अहले मक्का को जो है इबरत दिलाई जा रही है, धमकी दी जा रही है कि बेशक आजमाया हमने इनसे पहले कौमे फिरौन को, वजा अहम रसूलुम करीम, और आया इनके पास रसूल आली कदर। और इनके पास जो रसूल आया, वो रसूल कैसा रसूल था? वो रसूल बड़ा करीम था, वो रसूल बड़ा ही इज्जत वाला था। तो करीम के माने क्या है कि बादशाह जो है कायनात का, उसका सफीर, बड़ी इज्जत और शरफ का मनसब था उसके पास। इस पर गौर नहीं करना चाहिए था कि अमीर था कि गरीब। तो चूंकि फिरौन के शाही खानदान में से थोड़ी आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, कहां से आए थे? बनी इसराइल के गरीब खानदान से। और बनी इसराइल का गरीब खानदान जो है उसको अहले फिरौन और फिरौनी क्या समझते थे? उसको गुलाम समझते थे। तो असली वसब क्या था? खुदा का सफीर। और जो अल्लाह का सफीर हो, आखिर उसकी इज्जत में कोई कमी हो सकती है? क्या उसकी इज्जत में कोई शक हो सकता है? तो करीम का लफ्ज जब इंसान के लिए बोला जाए, इसके एक मानी है बहुत इज्जत वाला, बहुत खूबियों वाला। दूसरे मानी है कि उसकी, उसका किरदार, उसके औसाफ, उसकी खसलतें बड़ी अच्छी हैं, उम्दा है, बड़ा अच्छा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया इनके पास, और मूसा अलैहिस्सलाम जब यहां पर गए फिरौन के पास, अब यहां पर तफसील नहीं बताई जा रही, क्या बताया जा रहा है? उन्होंने कहा अन अद्दू, हवाले करो इलैया मेरे इबादल्लाह, अल्लाह के बंदों को। आपको पता ही है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब पैगंबर बनाकर भेजा गया फिरौन के दरबार में, सूरत तहा आयत 47 में भी आप पढ़ चुकी, फारसिल माना बनी इसराइल, तो आपकी जो रिसालत थी उसका एक बड़ा काम ये था कि आप इसराइल को, बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाएं। और कुरान मजीद में कई दफा आप पढ़ चुकी कि मूसा अलैहिस्सलाम का पहला मुतालबा क्या था कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझ पर ईमान लाओ। और दूसरा मुतालबा यह था कि कौमे बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाना। अब यहाँ पे जो है यही कहा जा रहा है कि रसूलुन करीम वो आए और उन्होंने ये मुतालबा किया कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो। अद्दू के दो मानी हैं, अद्दू इलैया इबादल्लाह। इसके एक मानी तो यही है कि अल्लाह के बंदे हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दो। मतलब क्या है कि इन्हें आजाद कर दो, तुमने क्यों गुलाम बनाया हुआ, जलील और हकीर बनाकर रखा है। दूसरा मतलब यह है कि ए अल्लाह के बंदो, मेरा हक मुझे अदा करो। अन अद्दू इलैया इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी तरफ अदा करो क्या मेरा हक। अब हक क्या था पैगंबर का? कि पैगंबर पर ईमान लाया जाए और पैगंबर की बात जो है उसको मानी जाए। और पैगंबर कैसा? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं रसूल हूं तुम्हारी तरफ ईमानदार। तो मैं जो हूं कैसा रसूल हूं? ईमानदार। जो भी अल्लाह का पैगाम है, जो दावत है, उसको बड़ी मैं ईमानत से पेश कर रहा हूं। वो अल्लाह तआलुल्लाह, और ये के नहीं तालु करो अल्लाह के मुकाबले में। अब आप देखिए कि वैसे तो अलू जो है बुलंदी के लिए आता है ना, किसी चीज का आला होना उसके लिए आता है। और जब अल्लाह की प्रेपोजिशन आए और साथ में अल्लाह भी आए, तो मानी क्या है कि अल्लाह के मुकाबले में सरकशी ना करो। अल्लाह तालु अल्लाह के मानी क्या है कि मुझे ये पैगाम दिया गया है कि अल्लाह का कहना मानो और ये कि अल्लाह का मुकाबला ना करो। क्योंकि रसूल का इनकार क्या है? अल्लाह का मुकाबला करना। रसूल पर ईमान ना लाना क्या है? अल्लाह पर ईमान ना लाना। तो मेरी असल हैसियत रसूल की है, रसूल अमीन, मैं अल्लाह का सफीर हूं, मेरा कहना मानो और मुझ पर ईमान लाओ और बनी इसराइल को ऐ फिरौन आजाद कर दे। वअल्लाह तआलुल्लाह, तो तुम क्या करो कि सरकशी इख्तियार ना करो। तो अगर इसको जमा के मानी में लिया जाए तो सारी कौम से कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ, और फिरौन इसके अंदर खुद ब खुद आ जाता है। इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिन मुबीन, और बेशक मैं लाया हूं तुम्हारे पास सुल्तान मुबीन। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे सुल्तान मुबीन का जिक्र है, और इसके मानी क्या है सुल्तान मुबीन के? सुल्तान मुबीन जो है असल में सुल्तान कहते हैं ऐसी कोई सनत जैसे जो के किसी जिस पर किसी अथॉरिटी के साइन भी हो, सुल्तान जैसे कोई इक्तदार होना, कोई इख्तियार होना, तो सनद और मुबीन खुली। अब यहां पर यह बताया जा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुझ पर तुम्हारा ईमान लाना इसलिए जरूरी है कि मैं तो सुल्तान मुबीन भी साथ लाया हूं, मैं ऐसे मोजात पेश कर रहा हूं जो मेरे रसूल होने का वाज़े सबूत है। तो यहां पे कहते हैं सुल्तान मुबीन से मुराद है असा और बैदा, जो निशानियां उनको जो है वो दी गई थी। तो मैं चूंकि अल्लाह का सफीर हूं तो उसके साथ मेरे पास ये सनद भी है कि असा भी है और यदे बैजा भी है। फिर आप देखें दुनिया में भी आपके पास, आपने कहीं से पढ़ाई की, आपके पास एक सनद होती है, जैसे एक अथॉरिटी होती है कि हाँ ये काम हमने किया है, तो उसके लिए ये आता है। वाइनी उसूबे रबी, और बेशक मैं पनाह में आता हूं अपने रब की। ये उन्होंने क्यों कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अपने रब की पनाह में आता हूं, और रब्बिकुम और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूं, ये क्यों कहा? असल बात यह थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो दावत के नतीजे में कौम ने आपको कत्ल की धमकी दी। आपने पीछे भी पढ़ा ना फिरौन ने प्लानिंग की कि कत्ल कर देना चाहिए, तो उसमें और लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई, तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह की पनाह ले ली। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कूदे लेकिन साथ ही कहा हसबुनल्लाहु निमल वकील व निमल मौला व निमल नसीर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं अल्लाह की तरफ जाता हूं, वही मेरी रहनुमाई करेगा, है ना। इसी तरह जो है वो असाबे कहफ ने भी ये दुआ की थी ना, क्या दुआ की थी जब उन्होंने गार में पनाह ली, तो क्या दुआ की थी? रब्बाना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यिलना मिन अम्रिना रशदा। तो अल्लाह की तरफ रुजू करना जरूरी है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। जा रहे हैं रास्ते में हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं। अब इन्होंने भी अल्लाह की पनाह की, अल्लाह की पनाह ली और ये बताया ये मेरा रब भी है तुम्हारा भी, तुम जो कर रहे हो फिरौन को जो खुदा मान रहे हो ये गलत है। और पनाह किस चीज से ली थी? अंतर जुमूनी, कि तुम मुझे रजम कर दो। नून के साथ या है जो गिर चुका है, हर्फ इल्लत है ना, कि तुम मुझे पत्थर मार मार कर खत्म कर दो, मुझे कत्ल कर दो, मैं तो रब की पनाह में आता हूं। वह इल्लम तो मिनू, और अगर तुम ईमान नहीं लाते, अगर तुम मुझे मानते नहीं हो, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो क्या है फातजिलूनी, तो मुझसे अलग हो जाओ, मुझसे अलग ही रहो, मुझे कत्ल करके अजियत पहुंचाने की कोशिश न करो। तो अब आप देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं बनी इसराइल को लेके जाना चाहता हूं, मेरे रास्ते में मत आओ। ये आयत में भी फातज़िलूनी नून के बाद याद गिर चुका है। अज़ल का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, किनारा कशी इख्तियार करना। तो तुम जो है मुझसे परे हो जाओ, मुझे छोड़ दो। फादा रब्बहू, फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अपने रब से अन्ना हाउलाई कौमुन मुजरिमून, क्या दुआ की कि ये सब गुनाहगार लोग हैं, ए अल्लाह ये सारे के सारे जो है ये मुजरिम हैं। अल्लाह को पुकारा कि अल्लाह ये मुजरिम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ क्यों की? कहते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो सारे मौजज़ात दिखाए जो अल्लाह ने दिए थे और इसके बावजूद भी वो ईमान लाकर ना उन्होंने दिया, और फिरौन ने ये सोचा कि अब जो है आपको खत्म ही कर देना चाहिए, उसने आपके कत्ल की जब प्लानिंग की, तो कहते हैं कि उस वक्त जो है एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी, दूसरी तरफ कौम को कत्ल करने से रोका, तीसरी तरफ उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने दरख्वास्त पेश की कि अल्लाह ताला अब इनका मुजरिम होना कतई तौर पर साबित हो चुका, किसी गुंजाइश किसी रियायत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, अब कुछ मोहलत अमल नहीं इनको देनी चाहिए, इनको खत्म कर दिया जाए। फिर अल्लाह ताला ने موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی فاسر بے عبادی راتوں رات لے کے چل. تو اسری جو ہے اسرا والمعراج اس سے آپ کو یاد ہی ہوگا نا. تو اسرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات کے وقت چلنا. کہ رات کے وقت چل بے عبادی میرے بندوں کو لے کر. کون مراد ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگ. لیلن آگے پھر آ گیا کہ رات کے وقت چل میرے بندوں کو لے کر. انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو متبعون تو کس نے پیچھا کرنا تھا؟ فرعون نے اور اس کے لشکروں نے. وترک البحر رہوا اور چھوڑ دے سمندر کو رہوا. تو رہوا کے معنی کیا ہیں؟ راہ وہ کے معنی ہوتے ہیں نرم رفتار سے چلنا. رحل بحر کے معنی ہوتے ہیں سمندر کا سکون پذیر ہونا, پانی میں موجوں اور لہروں کا تھم جانا. رکنے تھمنے کے لیے تین لفظ قرآن میں آئے ہیں اور یہ تیسرے درجے پر ہے رحل. جیسے ساکن ہونا. اب کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو پیچھے تھا فرعون, تعاقب کرتا ہوا آیا اپنی فوج اور لشکریوں کے ساتھ, اور آگے تھا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں. کہ اور موسیٰ علیہ السلام تو پریشان نہیں تھے بلکہ قوم کے لوگ بڑے پریشان تھے, ہے نا. آپ قرآن میں اور جگہ بھی پڑھ چکی ہیں, انہوں نے کہا چیخ اٹھے وہ لوگ کہ اب کیا کریں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی عصا کو جب سمندر پر ماریں گے تو اس میں جو ہے وہ سڑک بن جائے گی, اور سڑک بھی کیسی ہوگی کہ آرام سے جو ہے آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دے دیا کہ سمندر میں سے جب آپ گزریں گے, آپ عصا ماریں گے تو خشک راستہ بنے گا, جب آپ گزر جائیں تو اس کو اسی حالت میں رہنے دینا. موسیٰ علیہ السلام نے حالت تبدیل کیوں کرنی تھی؟ کیونکہ ڈر لگا ہوا تھا, پیچھے فرعون اور اس کے لشکری لگے ہوئے ہیں. تو ایسا نہ پھر عصا مار کر دوبارہ اس کو جو ہے وہ سمندر بنا دیں. تو ایسے نہ کرنا. وقت رکے لبارا رہا ہوا, لہروں کو تھما ہوا رہنے دینا, دوبارہ پانی جاری کرنے کی فکر مت کرنا. انہم جندن بے شک وہ لشکری ہیں, اور جند بھی اسم جنس ہے, تھوڑا زیادہ یعنی بہت زیادہ لوگ ہیں. مغرقون سب کے سب ڈوب جانے والے ہیں, سب کے سب غرق ہو جانے والے ہیں. تو یہ مصری جو تمہارا تعاقب کر رہے ہیں فرعون اور اس کے ساتھی, یہ سارے ڈوب جائیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمارا کام ہے تمہیں بچانا اور بچانے کی سبیل پیدا کرنا. پھر اس کے بعد آ گیا کم. کم جو ہے یہ کیا ہے؟ کم جو ہے یہ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے تو یہ خبریہ ہے جو کثرت کا فائدہ دیتا ہے, تکثیر کا. کم کے یہاں کبھی یہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہ یہاں پہ تکثیر کے معنی دے رہا ہے. اور تکثیر کے معنی کیا ہے؟ کہ کثرت. کتنے ہیں ترکو چھوڑے انہوں نے, من جنات و عیون باغوں سے اور چشموں میں سے. جنت ان کی جمع ہے جنات, عین کی جمع ہے عیون. تو فرمایا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح, ذرا سوچیں تو صحیح. اور کیا سوچوایا جا رہا ہے؟ کہ کتنے ہی باغ اور چشمے ہیں جن کو ترک کر دیا گیا, جن کو چھوڑ گئے وہ لوگ. اور وہ کون تھے چھوڑنے والے؟ فرعون اور اس کے ساتھی. فرعون اور جو قبطی لوگ تھے وہ. آپ دیکھ لیجئے کہ جنات باغات کے لیے آتا ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کو دیکھنا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر پانی کو مسخر کر کے وہ بریجز کتنے بناتی ہے, نہریں کتنی بناتی ہے نا. اسی طرح پارک, باغات, سیر و تفریح کے مقامات. باغات میں کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے, سیر و تفریح کا بھی ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں باہر کی دنیا میں پارک کتنے ہیں, خوبصورت بہترین. تو گویا کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ جو فرعونی تھے, تو کم ترکو من جنات و عیون کہ انہوں نے جو ہے چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے, وزرور और जर उनकी जमा है, जरूर खेती के लिए आता है। मकान करीम, और मकान करीम, मकान जो है जगह के लिए है, कि उन्होंने खेतियां भी छोड़ दी, और मकाम कयाम से है बैठने की जगह, तो वो तमाम जगह जहां वो बैठते थे, और जगह कैसी थी, करीम। करीम का लफ्ज उम्दा के लिए भी आता है, और किसी चीज का उम्दा होना करम, और इसके साथ क्या है, किसी का नफीस होना, किसी का बहुत बाबरकत होना। तो बात ये है कि उनके जो बैठने की जगह थी, उनके रहने की जगह थी, वो कितनी अच्छी थी, लेकिन सब उन्होंने छोड़ दी ना। तो मकाम करीम से मुराद क्या, जैसे आप देखें कि बाद ममालिक में बड़े खूबसूरत होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, 7 स्टार 5 स्टार है, रहने की बहुत अच्छी अच्छी जगह, वह नामत, फिर फरमाया और नेमते, नामत भी इसम जिन्स है, कानू फीहा थे इसमें फाकहीन, क्या करते हुए, मजे करते हुए। और आपको ये बात भी पता है कि फाकहीन जो है इसके भी दो मानी होते हैं, एक तो ये मेवा जात के लिए आता है, और बास को कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो फ्रूट आम जिन सब शामिल है, लेकिन बास कहते हैं नहीं, इससे मुराद सिर्फ ड्राई फ्रूट है जो लज्जत के लिए खाया जाता है। तो फिर मानी क्या है कि अल्लाह ताला ने इनको जो है जो कुछ भी दिया था, वो जो नेमते थी, वो जो ड्राई फ्रूट था, जो बहुत कुछ था उसके अंदर थे, और फिर वो उससे निकल गए, सब कुछ छूट गया ना। दूसरे मानी क्या है कि वो अपने बागों में, अपने चश्मों में, अपनी नेमतों में, वो अपने जो है वो खेतियों में हंसी करते थे, मगन थे, कुछ गपियां किया करते थे। तो इंसान ड्राई फ्रूट कब खाता है और हंसी और खुश गपियां कब करता है, जब बहुत ही मुतमिन खुशो खुर्रम सब चीजों को भूला हुआ होता है ना, उस वक्त इन चीजों में लगता है। वरना ड्राई फ्रूट वो तोड़ तोड़ कर निकाल कर खाना, बस सोचता है इंसान दो निवाले से पेट भर ले, है ना। तो लज्जत के लिए टाइम कहाँ होता है, बस दुरियाते जिंदगी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन अहले फिरौन और फिरौन जो है उसको जो कुछ अल्लाह ने नवाजा था, इतना कुछ नवाजा था, ये उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह ने क्या किया कि वो खेत, वो इमारतें जिसमें वो नियमतों के साथ मजे उड़ाया करते थे, कि अल्लाह ताला ने ऐसी तदबीर की कि फिरौन और उसके साथियों ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया और सब कुछ छोड़कर चले गए। और फिर ये तदबीर कैसी थी कि सारे के सारे निकल खड़े हुए, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम डूब जाएंगे। कजालिक इसी तरह, वह औरसना कौमन आखरीन, कि हमने एक और कौम को जो है वो इसका वारिस बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ ये जो दूसरी कौम आखर है ना, दूसरी कौम जो है इससे मुराद क्या है। बात कहते हैं कि इससे मुराद बनी इसराइल है, लेकिन असल राय क्या है, कहते हैं कि मुल्क मिस्र की विरासत जो थी उससे मुराद क्या है कि बनी इसराइल को नहीं मिली, ये किसी और कौम को मिली, क्योंकि तारीख से ये साबित नहीं है कि बनी इसराइल मिस्र से निकलने के बाद दोबारा मिस्र में आए। तो ये कोई पड़ोसी कौमें थी, और जब बनी इसराइल के लोग तो चले गए, क्योंकि आपको पता है ना आगे गए वापिस, हाँ, और दूसरी तरफ जो है ये दूसरी कौमें थी जो पड़ोस मुल्क से ये आई, और इन्होंने जो है वो इस पर कब्जा कर लिया। बहरहाल बनी इसराइल थे या दूसरी कौमें थी, जो भी था, अल्लाह ने इनको हटाया और दूसरों को वारिस बनाया। तो कजालिक के मानी क्या है कि नफ़अलु बिल मुजरिमीन, कि हम मुजरिमों के साथ ऐसे किया करते हैं। अब आगे अल्लाह ताला जो है यहाँ पे एक बड़ी ही दर्दनाक बात कहते हैं, बड़ी जो है वो जबरदस्त बात कहते हैं। समा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु, बस ना रोया इन पर आसमान और ना ही जमीन। वमा कानू मुनज़रीन, और नहीं थे वो मोहलत दिए गए उनमें से। इनकी तबाही और इनकी बर्बादी इतनी हसरतनाक थी, इतनी इबरतनाक थी, इतनी शदीद थी। इतनी दौलत, इतनी नेमत, इतना कुछ अल्लाह ने दिया, और इन्होंने कुफ्र किया और शिर्क किया, और फिरौन ही की पूजा की और फिरौन पूजा करवाता रहा। अल्लाह ने उनको ऐसा गारत कर दिया, ऐसा तबाह कर दिया कि ना इस पर आसमान रोया और ना इस पर जमीन रोई। दूसरी बात क्या है कि आसमान और जमीन जो है, जैसे अब पीछे तो कोई रहा ही नहीं था जो इनके मरने पर रोता, कोई भी नहीं था जो रोया, कोई बचा ही नहीं था जो रोता इनकी हलाकत पर, लेकिन आसमान और जमीन भी नहीं रोए। तो क्या बात पता चलती है कि आसमान और जमीन जो है वो रोते हैं, और आसमान और जमीन जो है कैसे रोते हैं, ये मुतअद्दिद रवायात से पता चलता है कि किसी नेक बंदे की मौत पर आसमान और जमीन रोते हैं। हजरत अंस रजी अल्लाह की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आसमान में हर नेक बंदे के, आसमान में हर बंदे के लिए दो दरवाजे मुकर्रर हैं, एक से इसका रिज्क नाजिल होता है, दूसरे से इसका अमल, और इसकी गुफ्तगू ऊपर पहुंचती है। चुनाचे जब वो बंदा मरता है तो ये दरवाजे उसे याद करके रोते हैं। फिर आपने गवाही के तौर पर, दलील के तौर पर इस आयत को तिलावत किया, समा बकत अलैहि मुसमा वल अर्द। तो जो बुरा बंदा मरता है अब क्या है, तो उस पर आसमान और जमीन रोते ही नहीं, क्योंकि वो तो बुरे अमल थे जो दरवाजे से गुजरते थे ना। इसी तरह एक और हदीस है जिसे शुरह बिन उबैद ने जो है वो रवायत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन भी ऐसी गरीबुल वतनी की हालत में रोता है कि इस पर कोई रोने वाला ना हो, तो इस पर आसमान और जमीन रोते हैं। इस पर भी आपने यही आयत तिलावत की और फरमाया कि ये जमीन और आसमान किसी काफिर पर नहीं रोते। हजरत अली रजी अल्लाह से भी मनकूल है कि उन्होंने नेक आदमी के मरने पर आसमान और जमीन के रोने का जिक्र किया, और आसमान और जमीन जो है ये रोते हैं, और ये इनका रोना हकीकी मानों में है, क्योंकि आपके पास ये दलील तो है ना, इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और गोया के कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की हम के साथ उसकी तस्बीह बयान करता है, और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि तुम उस उनकी तस्बीह को समझते भी नहीं हो। ये आप पीछे पीछे आयतों में पढ़ भी चुकी। फिर आपको वो बात भी याद होगी कि जो है वो हजरत मुआज जो थे, हजरत साद बिन मुआज, हजरत साद बिन मुआज जब फौत हुए, तो आपके फौत होने पर क्या हुआ था, आपने कहा था रहमान का अर्थ जो था वो लर्ज उठा, हिल गया। क्यों? हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह नो, इनकी हैसियत मुसलमानों में, मदीना के अंसार में ऐसी ही थी जैसे मुहाजरीन में अबू बकर सिद्दीक की, ये अंसार के सिद्दीक थे। और क्या है, आपने ये भी पढ़ा था ना कि 70,000 फरिश्तों ने इनके जनाजे में शिरकत की थी, है ना। फिर आप देखें खजूर का तना जिस पर आप खुतबा दे रहे थे, फिर आपके लिए जब मिंबर बना दिया गया तो आपने वो तना छोड़ दिया था, और आप जब मेंबर पर चढ़कर खुतबा देने लगे तो तना जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगा। फिर हमें हदीस से पता चलता है आपने उसको अपने साथ लगाया। तो बहरहाल असल बात क्या है कि ये कायनात, ये जमीन, ये आसमान जो हैं, ये क्या करते हैं, अच्छे अमल करते हैं तो इस पर ये खुश होते हैं, और बुरे अमल करते हैं तो ये नाराज भी होते हैं। इसी तरह मौत पर आसमान और जमीन रोते हैं, और असल बात फिर क्या है, वमा कानू मुनजरीन, कि इनको मोहलत भी ना दी गई, वलकद नजैना बनी इसराइल मिनल अजाबिल मुहीन, और तहकीक हमने निजात दी बनी इसराइल को अजाब मुहीन से, और हा वो नून से है तो मुराद के जिल्लत वाले अजाब से। तो ये अजाब मुहीन क्या था, खुद फिरौन की जात भी अजाब मुहीन थी, नंबर दो जो वो अजाब दिया करता था, दोनों ही अजाब मुहीन हैं। फिरौन अल्लाह के नजदीक जो है सिर्फ जलील नहीं था बल्कि क्या था, अल अजाब मुहीन, एक अजाब रुसवाई था। आप जरा तसव्वुर करें और सोचें कि ऐसा शदीद अजाब ये फिरौन और इसके साथी जब ये डूबे, ऐसी इबरत वाली मौत, और कोई इन पर रोने वाला भी ना था। आप क्या सोचती हैं, आप सोचें, मैं भी अपना मुहासबा करती हूं कि आमतौर पर हम दुनिया में देखते हैं कि किसकी वफात पर लोग रोते हैं। जितना नेक कोई होता है ना, लोग उसको जानते भी नहीं हैं और रोते हैं ना, तो जो जितना नेक होता है, जितनी खैर और फला और सआदत की राहें खोलता है, उसके चश्मे जो है वो खोलता है, सदका जारिया वाले काम करता है और लोग उस पर रोते हैं। और बाज औकात रिश्तेदार घर वाले जानते भी नहीं होते, और कहां कहां से लोग आकर बताते हैं कि ये जो था ये मुझे मेरे बच्चों की फीस दिया करता था, ये औरत जो थी ये मेरी महाना राशन का इसने इंतजाम किया हुआ था, और जब से मेरे शोहर फौत हुए ये औरत मेरी मदद किया करती थी, और फलां कुआं हमारे गांव में इसने खुदवाया था, और फलां मस्जिद तो इसी ने बनाई थी, और फलां मेरा बच्चे ने जो हिस्स किया ये इसने कराया था, और फलां वक्त पे इसने मेरी मदद की, और किसी को भी नहीं पता। हत्ता के बीवी मदद करती है तो शोहर को नहीं पता, शोहर मदद करता है तो बीवी को नहीं पता, वालदैन करते हैं तो बच्चों को नहीं पता। तो दुनिया रोती है, दुनिया रोती है। तो असल बात क्या है, मेरी और आपकी मौत कैसी होगी? और आप देखेंगे फरिश्ते भी जिनाजों में शिरकत करते हैं ना, मेहमान का अर्श भी हिल जाता है जो जितना नेक होता है। आइए अपने अंदर नेकी पैदा करें, आइए अपने आप को फिरौन और फिरौन की कौम के अमलों से बचाएं। और वो कैसे थे? वो तकब्बुर करने वाले थे, वो शिर्क करने वाले थे, और वो रसूल का इनकार करने वाले थे। अगर किसी के दिल में जरा बराबर भी किबर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा।